కాళరాత్రీం బ్రహ్మస్తుతాం వైష్ణవీం స్కందమాతరం సరస్వతీం ఆదితిం దక్ష దుహితరం నమామి
तेज गर्म का मतलब तेजो में पर्व, गुरु पूर्णिमा के तेजो में प्रकाशित पर्व पर ये भी आषाढ़ी चल रहा है। संक्रांति देखे तो हम सब यहां एकत्रित हुए हैं पंजाब की गर्मी को लेकर। गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए कश्मीर नहीं जाना, शिमला जाना नहीं, मलके में ही आए हैं। कई स्थानों से गर्मी पंजाब में काफी पड़ती है, राजस्थान पास ही लगता है वैसे तो। ये गर्मी का पर्व है जो दिल को पिघलाने वाली, जो अहंकार, जो अकड़, अहंकार की जो अकड़ है उसको पिघला सकती है ये गुरु पूर्णिमा की गर्मी। यदि हम इस गर्मी को अपने हृदय के अंदर भर लें, स्वीकार कर लें, हजम कर तो ये गुरु पूर्णिमा को। हाँ, गुरु पूर्णिमा का पर्व जैसे संक्रांतियों की दृष्टि से देखा जाए तो यह भी आषाढ़ ही है। हाँ, आषाढ़ गर्म, आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाम ना जिन्ना पास, उनको लगता है आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हरि चरण निवास। हाँ, जिसके मन हरि चरणों में निवास करेंगे उसके लिए ये गुरु पूर्णिमा है। गर्मी का मौसम भी, लेकिन विचार यही करना है ये गुरु पूर्णिमा का मौसम कैसे बनता है। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और कल से सावन शुरू हो गया चंद्र मास की दृष्टि से। सूर्य की दृष्टि से, संक्रांतियों की दृष्टि से देखे जाएं तो भी समय लगेगा, लेकिन गुरु पूर्णिमा की दृष्टि से देखें तो कल से सावन भादो बरसात वाला मौसम है, जो ऊपर से बारिश होती है। गर्मी धरती से ऊपर उठी और ऊपर उठती ही चली गई, ऊपर उठती ही चली गई, और वो बादल बन जाती है। इसी प्रकार कब बादल बनती है, जब हद है, जब हद से पार हुई गर्मी, पृथ्वी की हद से पार हुई गर्मी, जो समुद्र से उठती थी, समुद्र के पानी को भी गर्म करते हुए साथ उठा ले गई थी, और बादल बन गई, और वही बादल बरसते हैं और धरती को शीतल कर देते हैं। सावन भादो आ गए तो ये बाहर की गर्मी है। हाँ, जो बाहर है वही अंदर भी तो हो, अंदर भी तो है। बाहर संसार में भी तपस है, बाहर संसार में भी गर्मी है, लेकिन जो मन मुख है, जो परमात्मा से विमुख है, वो बाहर ही भागता है, हाय हाय करता है, वह बहुत गर्मी, बहुत गर्मी, हर साल कहते, हर बार कहते, जब भी कोई कष्ट आएगा हाय हमारे, जब भी कोई रोग आएगा हाय पता नहीं क्या किस कर्मों का फल है, किसी ने उंगली भी दिखा दी तो हाय हाय, और 2-4 लाख का मुनाफा भी हो गया तो हाय मरे गए, 10 लाख का होना था। तो जो मनमुख है, जिनकी दौड़ बाहर की ओर है, वो गर्मी में हाय हाय, संसार की किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो सांसारिक सुख हो या दुख हो, वे हाय हाय ही करते हैं। किंतु जो गुरुमुख हैं, जिनकी नजर अपने अंदर बैठे परमात्मा के साथ है, अंदर की ओर है, वो जो कुछ भी बाहर से आता है, अच्छा हो बुरा हो, सुख हो दुख हो, सब सबको वो हजम कर लेते। तेरा भाना मीठा लागे, हाँ ये है गुरु गुरु शिष्य का लक्षण है। तो जो कुछ भी वो अंदर भरेंगे वो मीठा लगे नहीं, हाँ लगता हो ही जाता है, गर्मी रस बदल जाती है। कोई भी विकार अंतःकरण की चेतना को विकसित कर देते हैं, बाहिर्मुखी वृत्तियां वे ही जब, कौन सी वृत्तियां, क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो बाहिर्मुखी वृत्तियां जब अंतर्मुखी होती हैं तो वो शक्तियां बन जाती हैं, तो वो गुरु पूर्णिमा है। हमने तो थोड़ा सा कुछ दिया, आधा अधूरा दिया, कंटीला भी दिया, चाहे जैसा भी था, अंतःकरण की बगीचे में चलो सुख है तो चलो, अच्छी वृत्ति है तो चलो वो भी अर्पित, और यदि खराब वृत्ति लोभ मोह चलो वो भी कर दो अर्पण, गुरु के ईर्ष्या राग द्वेष यदि वो भी कर सकते हो, बिल्कुल गुरु के अर्पित, गुरु उसको भी पूर्ण कर देंगे, उसमें भी किसी भी वृत्ति में भी जो पूर्णता भर देते, गुरु शक्ति जो पूर्णता भरती है वही गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो विधि जानने के लिए, वो विधि में साधना में जागरूक बने रहने के लिए हम यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं। तो इस प्रसंग में बातें तो बहुत की जा सकती है, लेकिन दो तीन बातें ही खास है। पहली बात गुरु कौन, दूसरी बात शिष्य कौन है, तीसरी बात गुरु शिष्य का मिलन कैसे होता है। तो तीन में कहें तो बहुत कुछ आ जाता है। तो हम बात गुरु पूर्णिमा की कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत हम करेंगे शिष्य से, क्योंकि यदि गुरु से भी चर्चा शुरू करें तो ये पक्का समझ लें, जो कहता है कि मैं गुरु हूं और तुम मेरे शिष्य हो, अभी वो साधन पथ पर चला ही नहीं, अभी वो नहीं गहरेगा है। दुनिया में कोई ऐसा गुरु नहीं होगा जा हुआ जो ये कहता है कि मैं तुम्हारा गुरु, जो ये मानता है कि मैं गुरु हूं और ये लोग मेरे शिष्य। शास्त्रों में तो साफ ही कहा है ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, ठीक, लेकिन अगली पंक्ति मुख्य जो है मन अपने में सबसे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपने है सबसे नीचा, सबसे जड़ चेतन कीड़े पतंगे, जो सबसे अपने आप को मन में, ये नहीं बैलने का काम तो बहुत छोटे हैं, कहने वाली बात नहीं है। हाँ जी मैं दंडवत करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं के साथ कुछ भी जुड़ गया वो नीचा नहीं है। नीचे का मतलब मैं हूं ही नहीं, नीचे का मतलब ये होता है कि मेरे अंदर परमात्मा ही परमात्मा है, मेरे अंदर वो परमात्मा है जो सब घटों में समाया हुआ है। तो वो परमात्मा जो सब घटों में समाया हुआ है उनकी तो मैं चरण रज हूँ। तो कहते हैं मन अपने जैसा ब्रह्म ज्ञानी है जिसकी दृष्टि में सर्वत्र ब्रह्म ही है, जो अहम है ही नहीं, तो वो नीचे से नीचा, इस प्रकार से नीचा है। लेकिन जो ऐसा है वो क्या कहेगा कि मैं तेरा गुरु हूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। हाँ तो ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी है उसकी शरण में जब कोई जिज्ञासु आता है, जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको परमात्मा की प्राप्ति की तड़प है, तो वो जो शिष्य है उसकी दृष्टि में वो गुरु है, उसकी दृष्टि में वो स्वयं परमात्मा ही है। हम कहते हैं ये दृष्टि दृष्टि का खेल हमें नहीं समझ में आ रहा, तो नहीं समझ में आएगा यदि तड़प नहीं हो परमात्मा प्राप्ति की। जब तक अहम को खत्म करने के रास्ते पर ही नहीं चले, जब तक शरीर में ही मैं बुद्धि है, जब तक धन को लेकर, ये इतना धन वो बहुत बड़ा है, इतना मकान, इतनी कोठियां वो बहुत बड़ा, इतनी बिल्डिंगें, इतना समाज में सम्मान है वो बहुत बड़ा है, जब तक ये दृष्टि है तब तक वो नहीं समझ सकता है कि जो है ही नहीं उसके अंदर परमात्मा है। तो जिसके अंदर कुछ है ही नहीं उसकी शरण में वो जाता है जिसको परमात्मा की प्राप्ति की तड़प है, और जो शिष्य है उसकी दृष्टि में वही सब कुछ, वो परमात्मा की प्राप्ति करवाने का दरवाजा है। हाँ शरीर जो जो शरीर चलता फिरता है, जिसके अंदर वो ब्रह्म ज्ञानी का निवास है, जिसके अंदर एक ब्रह्म ज्ञानी ने परमात्मा के साथ मिलन कर लिया दशम द्वार को खोलकर, वो शरीर शिष्य के लिए गुरु द्वारा बन जाता है। शरीर गुरु वाली बात नहीं है, वो गुरु शरीर जो है वो जो ब्रह्मज्ञानी सूक्ष्म दरवाजा है, ये शरीर स्थूल दरवाजा है। किसके लिए है? वो शिष्य के लिए। तो बात शिष्य पर आ जाती है। तो हृदय के अंदर हमारी कितनी तड़प है। हाँ, ये ठीक है, जितनी जिसकी तड़प हो ज्यादा, चाहना से ज्यादा, वो बहुत आगे है। और यदि तड़प कम है तो आगे तो वो भी जाएगा, चलता जाएगा, लंबा समय लग सकता है। जो लौकिक कार्यों के लिए भी आए कभी, तो भी वो गुरु, तो गुरु शक्ति तो उसका कल्याण है। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानी और उसके साथ हमने जोड़ा था शिष्य, जो परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते पर है, चाहता है परमात्मा की प्राप्ति, या वो भी हो सकता है कि संसार के दुखों से भयभीत है, संसार में उसको कोई आसरा नजर नहीं आ रहा, दुखी है, रोगी है, निराश है, लेकिन संसार में उसको लगता है कोई आस नहीं। तो ऐसा जो निराश है, वो यदि गुरु के चरणों में आशा दीप जगाता है, तो उसके द्वारा भी परमात्मा की शक्ति से, गुरु शक्ति से उसका मिलन या जुड़ना शुरू हो ही जाए, वो भी शिष्य ही है। हाँ, धीरे धीरे चलेगा, चलता जाए, यदि वो उनके साथ जुड़ा रहे, बस इतनी ही बात। कैसे जुड़ना है? हाँ, तड़प तो है ही, कैसे जोड़ते हैं गुरु, कैसे ब्रह्मज्ञानी उस जिज्ञासु शिष्य को परमात्मा के रास्ते पर, परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते पर चलाने की शक्ति देते हैं, मार्गदर्शक। हाँ, तो ये अपने पंजाब में तो बहुत ऐसे संस्कार भरे ही पड़े हैं। गुरुमुख प्रहलाद जप हर गत पाई, गुरुमुख जनक हर नाम लेव लाई, ऐसी पंक्ति आती है। बिन गुरु हर नाम ना किन पाया मेरे भाई, बिना गुरु के भगवान का नाम, हरि का नाम किसी को मिला नहीं, ना प्रहलाद को, ना जनक को, ना ध्रुव को, या किसी और को, किसी और को। तो जो शिष्य परमात्मा की प्राप्ति या संसार के दुखों से भी त्रस्त है, भगवान की ओर मुख करता है, तो मुख उधर जोड़े रखने का और आगे बढ़ाए रखने का, वो गुरु और शिष्य के बीच में जो पुल है, नहीं तो गुरु बहुत महान, शिष्य भी कहाँ कहाँ है, तो बीच में एक पुल बनता है, वो पुल है भगवान का नाम, गुरु नाम, हरि नाम। बिन गुरु हरि नाम न किन्ह पाया मेरे भाई। अब कहो जी, इसमें तो बात कोई हमें समझ नहीं आई कि वो गुरु से ही नाम कैसे मिलेगा। तो नाम तो कहते भगवान के इतने नाम हैं, चलो ये हो सकता है कि कौन सा नाम लें, ये वो लें, चलो जाओ जो अच्छा लगेगा ले लेंगे भी, आराम आराम सारे जानते, इसमें क्या मुश्किल है। ओम नमो भगवते वासुदेव लिखा, ओम नमः शिवाय, वाहेगुरु, सतनाम, केशव गोविंद, इतने नाम हैं, ये गुरु से पास जाने की क्या जरूरत पड़ गई। लिखेंगे किताब में तो बड़े बड़े जो वैदिक मंत्र हैं जिनका सस्वर पाठ किया जाता है, चलो वो ठीक है, वो तो भी संस्कृत में समझ में नहीं आती, चलो हिंदी पंजाबी वो तो हम सब जानते हैं, तो ये बात कैसे अपने समझ में नहीं आती कि गुरु के मुंह से ही नाम क्यों, कहीं से भी क्यों नहीं ले सकते, अपनी पसंद का वो बड़े अपने पसंद का छांट लेंगे तो ऐसा क्या बात। तो यही एक बात है, यही खास बात, नाम पदार्थ गुरु दीना है। जैसे ये सेब है पदार्थ दिखाई देता है ना, तो ये लो ऐसे हाथ से दिया तो उसने पल्ला पल्ला कर ले लिया। वस्त्र है ये लो भाई दुकान, हाँ ले 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 ली, अपने पैक करके रख लिया। तो नाम भी कुछ ऐसा ऐसा ही है, नाम भी एक पद का अर्थ, जैसे ये भी नहीं समझ आया, नाम तो दिखाई देता नहीं है, नाम तो पकड़ में आता नहीं है, कैसे इसको पकड़ेंगे, उस हाथ से पकड़ेंगे, किस प्रकार वो ऐसे गुरु कैसे देगा। हाँ यही नाम दान विज्ञान है। तो इससे पहले हम कुछ और चर्चा करें, ये देख लें, जैसे कागज के ऊपर पानी ये शब्द लिखा हुआ है, कागज ले लें उस पर ये पानी लिख दें, ठीक है लिखा हुआ पानी, उसको कागज के मुंह में डालोगे प्यास बुझेगी, निचोड़ लो ऐसे क्या उसमें से पानी निकलेगा। लकड़ी है उसके अंदर आग है, बिल्कुल है ना, फूक मारते रहो कहां आग निकलती है, उसके ऊपर अग्नि 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 लकड़ियों के ऊपर लिख दो चारों तरफ, भर दो ऊपर पतीला रखो, उसे देखो कहां आग है तो सही है। तो अग्नि ये अग्नि ऐसे कहने वाली बात नहीं, लिखने वाली बात नहीं, पानी ऐसे लिख के पढ़ लेने वाली बात नहीं है। इसी प्रकार हरि का नाम, भगवान का नाम, महावाक्य इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, उसको पढ़ के और फिर रट लेने वाली बात नहीं है। इधर से सुना, मन मर्जी से सुना, कई शब्द चल रहे हैं, अपनी पसंद का शब्द सुना और फिर उसको करते रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या है वो हरि नाम? हाँ वो हरि नाम की बात कर रहे हैं, जो गुरु और शिष्य के बीच में एक पुल है, वो पुल जो अनंत तक परमात्मा तक ले जाता है। तो फिर देखें नाम क्या है, कोई भी नाम ले लें, हम बैठे गुरु हर्ष ऐसे बोला, चलो वो तरंगे शब्द की तरंगे वो गई वहां तक पहुंची, कानों में टकराई, उनको पता लगा कि मुझे बुला रहे, बोले हैं ना कुछ, ऐसे हमने कागज में लिख के जेब में डाल देते तो कहां से, हाँ यदि करते तो शायद देख लेते दूर से, लेकिन आंख के साथ जो लिखा उसका सम, जो बोला उसका कान के साथ तो संबंध होना चाहिए। तो जो नाम है, जिसका नाम है, और हरि का नाम तो मतलब परमात्मा का नाम, दुनियावी नाम भी है कि उसका नाम उसका नाम उसका नाम उसका नाम, तो उस नाम के कोई बोलते हैं तो समझ में आ जाता है वो बोल रहे हैं, लेकिन जब हम परमात्मा ऐसा राम राम कह रहे हैं तो उस राम ऐसा जो शब्द है उससे जो उठ रही तरंगे, शब्द का मतलब कुछ वाइब्रेशन, जब भी बोलते हैं वो तरंगे, शब्द की तरंगे पैदा होती हैं। पानी में ऐसे बोले ऐसे लहरियां उठती चली जाती हैं, माइक पर बोले तो सूक्ष्म यहाँ पर वो वहां पर सारा वो हिलता जलता रहता है, तरंगे उठती रहती हैं, लेकिन इतने से बात नहीं है। वो तो भगवान का नाम है, वो तरंगे वहां से आनी चाहिए, भगवान से आ रही है ना। हमने उसको बोला तो हमसे ये लिंक बन गया, मैंने बोला गुरु हर्ष वो लिंक बन गया, उसने सुन लिया। अब हरि का नाम, हरि ऐसा परमात्मा का नाम, परमात्मा बोले हम तक पहुंचे, हम उसको सुन लें तो लिंक बन गया, वो गुरु नाम है। लेकिन हम बोले हो तो ये हरि नाम भी बोले, राम राम भी बोले, तरंगे उठी ऐसे ऐसे वायुमंडल में खत्म हो गया, भगवान तक तो पहुंची नहीं, क्योंकि हम बोल रहे हैं हमारा मन जैसा बोल रहा है, मन में इतनी अंतर्मुखता नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, इतना वेग नहीं है, मुंह से बोले जीभ से बोले चाहे हरि नाम ही बोले, सारी साउंड वेव सारी वाइब्रेशन बाहर जाके बिखर जाती, खत्म हो जाती, शून्य जैसी हो जाती है, तो वो हरि नाम नहीं। हाँ फिर समझ लें, भगवान के नाम का मतलब है वो तरंगे जो भगवान से सीधी आती है, मेरे तक पहुंचती है, मैं उनको पकड़ता हूँ, भगवान से जुड़ जाता हूँ। तो अपनी मर्जी से बात नहीं, तो इसके बारे में विज्ञान है नाम दान का मतलब है, तो उसको हम गुरुवाणी का ही प्रमाण लेकर कहते हैं। भगवान का नाम उसका मतलब क्या है? सूखम मूरत नाम निरंजन काया का आकार। जो भगवान निरंजन है, जिसमें कोई अंजन नहीं, जिसमें कोई मैल नहीं, वो सूक्ष्म मतलब आंखों के द्वारा नहीं दिखाई देता, बाहर के कान भी पूरा नहीं सुनते, तो वह सूक्ष्म बहुत सूक्ष्म है, लेकिन वो काया का आकार ये शरीर में आकारित हो जाता है। सूक्ष्म मूर्त नाम निरंजन काया का आकार, वैसे तो काया ही भी क्यों कहे, सारा ब्रह्मांड तो हो जाता है, जो नाम है सारा ब्रह्मांड उसका आकार है, ओंकार ब्रह्मा उत्पत्ति ओंकार ऐसे 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 ऐसे, वही तो सत्य नाम है। तो उस नाम का सारा ब्रह्मांड ये आकार है, लेकिन वो तो पकड़ में नहीं आता है। तो कहते हैं एक मेरा शरीर, मेरी शरीर में मैं बुद्धि है, तो शरीर में ये पूरा प्रकट हो सकता है, तो मेरी शरीर में बुद्धि है, तो जिसके शरीर में वो पूरा प्रकट है उसके साथ जुड़ूंगा तो मुझे वो नाम के साथ संबंध जुड़ जाए, क्योंकि भगवान का नाम ये आकार धारण करता है, कई आकार, तो मेरे लिए नाम वो है। तो किसके शरीर में वो नाम वहां से आता है, परमात्मा से, दशम द्वार से, दशम द्वार से वो नाम की धारा चलती है, बुद्धि में, मन में, प्राण में, ज्ञानेंद्रियों में, कर्मेंद्रियों में, तन में, सारे शरीर में व्याप्त होती है, और वो काया के आकार को धारण कर लेती है, और फिर जो ऐसा जो नाम जिसके शरीर में रोम रोम में ऐसे शब्द तरंगे भरी हुई हैं, वहां से एक चिंगारी यदि निकल कर मेरे हृदय के अंदर, शिष्य के हृदय के अंदर पहुंच जाए, तो संबंध जुड़ गया, और ये जुड़ने का नाम ही है नामदान। क्योंकि वो नाम ब्रह्मज्ञानी ने उसने भी नहीं कहा, हाँ वो तो कहता मैं तो हुई नहीं, इसके अंदर तो परमात्मा ही है, वो नाम की तरंगें जो सारे शरीर में भरी हैं, दशम द्वार वो ब्रह्मांड के पार से दशम द्वार में से होकर सुषुम्ना पथ से होकर फिर इंद्रिय क्षेत्रों में मुख में हाथों में आंखों में वो शब्द की वाइब्रेशंस निकलती 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 उसको कोई ग्रहण कर ले, उसको कोई सुन ले, वो शिष्य बन गया। जो श्रद्धा से सुन लेता है उस नाम को वो शिष्य, क्योंकि उसको बाहर से कानों से पूरा नहीं सुना जा सकता, मन से सुनता होगा। जो मन से सुनता है धारण करने के लिए कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, तो इस प्रकार जो नाम को सुनता है श्रद्धा के द्वारा, तो श्रद्धा हाँ एक ऐसी खास चीज है, बिना श्रद्धा के नहीं बात करेंगे। श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यत् श्रद्धा सा एव सः, श्रद्धा मैं ही पुरुष है। हाँ, पुरुष का यदि एक नेचर जिसको कहते हैं, प्रकृति जिसको कहते हैं, स्वभाव जिसको कहते हैं, तो प्राणी कैसा है, तो जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही वो पुरुष है। तमोगुणी श्रद्धा भी हो सकती है, रजोगुणी श्रद्धा भी हो सकती है, सत्वगुणी श्रद्धा भी हो सकती है, अलग अलग है। तो जिसकी जैसी श्रद्धा हो वैसी बात को वो पकड़ लेता है। तमोगुणी श्रद्धा हो तो बस खाओ पियो ये करो वो बातें बड़ी पसंद बड़े एकदम खींचती हैं। रजोगुणी श्रद्धा मैंने ये करना, मैंने ये ऐश्वर्य प्राप्त करना, ये करना, तो जैसा कहां से कोई रास्ता मिलता है वैसा व्यक्ति मिलता है उसके साथ एकदम लगाव। और जिसके सात्विक श्रद्धा जो परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते पर चलना चाहता है, तो जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा जीवन ऐसा शरीर ऐसा उसको दिखाई देता है कि वहां पर परमात्मा ही और कुछ है ही नहीं, तो वो खींचा चला जाता है। जैसी श्रद्धा, तो श्रद्धा इसके रहने का स्थान इस हृदय के अंदर है। वो श्रद्धा के द्वारा वो जिज्ञासु उस ब्रह्म द्वार के द्वार साथ जुड़ते गुरु द्वारे के साथ जो शिष्य है शरीर है उसके साथ जुड़ता है। तो ये श्रद्धा थोड़ा सा उसके अणु थोड़े से कुछ वाइब्रेशन वो शिष्य के शरीर के अंदर वो खींच लेते हैं, और थोड़ा सा खालीपन जब इधर होता है और उधर से नाम की तरंगे आने शुरू, तो नाम दान हाँ वो तो देने के लिए है तैयार, तो वो लेने के लिए कुछ देना भी होता है। हाँ, क्या देना होता है, बाहर से रुपए पैसे वाली बात नहीं बनने वाली, वो तो पकड़ के दे देंगे, अपने अहम का अपने दिल का एक टुकड़ा थोड़ा सा देना पड़ता है, उसी को कहते हैं श्रद्धा। कुछ खाली करना पड़ता है बहुत गहरे स्तर पर, इसी को कहते हैं समर्पण। और यदि वो कुछ खाली नहीं किया, आपके हृदय का एक कमरा खाली नहीं किया, कहते जी नाम दान दे दो जी, पीछे पड़े हुए हैं, जिद कर रहे हैं, हट कर रहे हैं, और नाम लिया और फिर कभी मुंह नहीं है, तो ये कोई नाम। हाँ, दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक पराविद्या एक अपराविद्या। अपराविद्या होता है जो अहम के आश्रित होती है, वो बड़ा से बड़ा विद्वान बन जाए, तपी बन जाए, जपी बन जाए, बड़ा से बड़ा संगीतज्ञ कलाकार बन जाए, मैं हूं वो अपराविद्या है, ऐश्वर्य को प्राप्त करवाती है। लेकिन एक पराविद्या है जो परमात्मा से मिलाती है, तो पराविद्या की प्राप्ति तब होती है जब वो अपने यहाँ पर हृदय के अंदर एक कमरा खाली कर देता है कि अंदर यहाँ पर आओ, और वहां पर क्या आता है, वहां पर नाम की तरंगे, सचमुच वो नाम पदार्थ है, वो वहाँ पर आ जाता है श्रद्धा के द्वारा। फिर वो जो मुंह से भी बोलेंगे, हाँ स्थूल स्तर पर जब तक हमारी चेतना स्थूल शरीर के साथ जुड़ी हुई है तो वो सूक्ष्म भी नहीं समझ में, चलो समझने में नहीं आ रहा है तो मुंह से भी बोलते हैं। तो जैसे मुंह से बोले हुए शब्द के भी, मुंह से निकल रहे शब्द के भीतर भी है तो वो ही शब्द है जो लक्ष्मण द्वार से आ रहा है। हाँ? कैसे है, जैसे एक चावल हो, मान लीजिए एक चावल का दाना है, उसको धरती में बो दे कुछ नहीं होता, चावल का छिलका है उसको अलग कर दिया था, उसको धरती में बो दे कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा चावल चाहिए जिसके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ हो, छिलका और चावल दोनों बिल्कुल एक जैसे हुए हो, उसको धरती में बो दो वो पौधा बन जाता है। तो ये कान से जो शब्द सुनते हैं, जो मुंह से शब्द आ रहा है वो छिलका है, जरूरी है। जब तक शरीर में मैं बुद्धि तो पौधा नहीं बना, जरूरी है। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये जो कान से मैंने शब्द सुना, शिष्य ने सुना है, उसके अंदर ब्रह्म रंध्र से, दशम द्वार से, उसके मन बुद्धि से आ रही शब्द की तरंगे हैं घनीभूत हुई, वही नाम है। तो दोनों की आवश्यकता है, और वो नाम मुंह से भी कान पूरा बिल्कुल ऐसे नहीं कि लाउड स्पीकर बोले और इधर वायुमंडल में तरंगे व्याप्त हो गई, थोड़ी सी इधर गई, थोड़ी सी इधर, थोड़ी सी इधर। और जहाँ पर माइक से बोलते हैं तो सारी बिखर जाती है, कान में थोड़ा ही जाए, वो फोर्स है, ये भी वाइब्रेशन है। तो लाउड स्पीकर पर जो नाम दान वो पूरा इसमें वेग नहीं हो सकता। अश्रद्धा की बात अलग है, कोई श्रद्धा से कितना ग्रहण कर सके। तो जितनी भी जो साउंड वेव है जो मुख से विशेष रूप से निकल रही है नाम के समय देते समय, तो सारी की सारी कम से कम वो शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाए, तो ये तो चाहिए। फिर इतना ही नहीं है, फिर वो जो वैखरी शब्द है ठीक, लेकिन आंखों से भी आती है नामों की तरंगे, हाथ से भी निकलती है, उसके जो दे रहा है उसके रोम रोम से भी शब्द की तरंगे निकलती हैं। तो सामिप्य भी चाहिए, श्रद्धा तो चाहिए ही चाहिए। उसके शरीर के रोम रोम से जो शब्द की तरंगे निकलती हैं उसको शिष्य ग्रहण कर लेता है अपने अधिकार के अनुसार, स्तर के अनुसार, तमोगुणी हो वो भी, सतोगुणी हो वो भी, रजोगुणी हो वो भी, या इसके कितने कॉम्बिनेशन है वो कोई गलत नहीं। तो इस प्रकार वो नाम दान होता है, लेकिन इतने से भी बात, हाँ बीज धरती में बीज डाल दिया बिल्कुल पक्का है, लेकिन इतने से ही बात नहीं बनने वाली है। बीज ना हो धरती में तो चाहे कितनी मर्जी खाद डालो पानी डालो नहीं बात बनती है, लेकिन बीज डाल दिया है और खाद पानी नहीं डालो तो भी बात नहीं बनती है। तो निरंतर खाद पानी डालते रहे, समय समय पर करते चले जाए, इतने से भी बात नहीं बनती। हाँ जहाँ ज्यादा खाद पानी होता है ना वहाँ घास भी ज्यादा हो जाता है, हाँ ये भी खतरा है। अहंकार, मैं जब मैंने तब किया, मैं ये हो गया, तो कोई भी वृत्ति ऐसे कुवृत्ति ऐसे निकले उसको उखाड़ते रहना जड़ से ही पहले ही निकाल, तो ये भी करना इतने से भी नहीं। अरे गुरु ने तो नाम ले दिया, गुरु तो दरवाजा है, हम जुड़ गए हैं, अब तो हम अभ्यास करते रहेंगे, वहां जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि मेरे अंदर परमात्मा बैठे ही, वो परमात्मा के साथ उन्होंने नाम के द्वारा संबंध जोड़ ही दिया है, अब अभ्यास करेंगे और वहां पर दोबारा बार बार जाने की क्या जरूरत है। तो ये बड़ी गलती हो जाती है। हाँ मजबूरी है तो कारण ही हो गए हैं तो वो बात अलग है, यदि जाना चाहते हुए भी किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं तो हमारा मन पहुंच जाता है, शरीर की तरंगे पहुंच जाती हैं। लेकिन यदि ये कहे कि जाने की जरूरत ही नहीं कि ऐसे ऐसे, वो एक पागलपन होता है। क्यों कैसे हुआ? क्योंकि हमने पहले स्पष्ट किया है ये दर्शन द्वार से सारे ब्रह्मांड की घनी भूत तरंगे होकर ये शरीर में से होते हुए गुरु के द्वारा शरीर फिर वो शिष्य के हृदय में आई और फिर वो शिष्य उसका निरंतर अभ्यास करता है, फिर वो उसके साथ साथ करते हुए घास पानी फाड़ता चला जाता है। अब वो कहे कि अब मुझे उसके साथ गुरु की कोई जरूरत भी नहीं है तो क्या हो गया? संबंध टूट गया, टूट गया संबंध। और बीच में क्या आ गया? अहम आ गया। जब अहम आ गया, संबंध टूट गया, तो गुरु नाम नष्ट खत्म हो गया। अब गुरु नाम में मन मेरा मन मर्जी का नाम हुआ है, वो नाम जो मेरे अहम के इर्द गिर्द घूम रहा है। यदि कोई ये कहे ठीक है भी जब तक अभ्यास नहीं है, जब तक मतलब अंदर बैठे परमात्मा के साथ मिलन नहीं हुआ तब तक तो गुरु के पास जाने की जरूरत है, जाएंगे करेंगे, लेकिन जब अंदर ही ब्रह्म चेतना प्रकट हो गई तो फिर बाहर से जाने की क्या जरूरत है? तो ये भी पागलपन ही है। यदि ऐसा मन में आता है तो बहुत बड़ा शक है कि अभी बात बनी नहीं है। जब वो कहते वहां जाने की क्या जरूरत, अब तो अंदर ही हो गया, अब तो अंदर ही ब्रह्म ज्योति प्रकट हो गई है, इसका मतलब यही हुआ अंदर और बाहर दोनों के बीच में हमने अपनी मन मर्जी की अहंकार की बड़ी भारी दीवार खड़ी कर दी है, तो नहीं हुआ काम। तो गुरु तो ये कहते हैं बाहर भीतर एक का होगा, अब नहीं जरूरत है बाहर कहीं जाने की, मेरे अंदर ही प्रकट हो गया तो अंदर भी एक मन मर्जी का बना हुआ है। और साथ में ये भी बात है, यदि मान लीजिए ऐसा अंदर बाहर भी उसको एक दिखाई देता है, यदि ऐसा भी मान लें तो भी शास्त्रों ने कहा है और सब कुछ है ही है, अद्वैतम सर्वभूतेषु नाद्वैतम गुरुणा सह, सब जगह तू ही है, मैं और तेरे में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सही, मुझ में तुझ में कोई फर्क नहीं है, परमात्मा में मुझ में कोई फर्क नहीं है, लेकिन गुरु में और शिष्य में फर्क रहता है, शिष्य शिष्य ही रहता है जब तक वो शरीर में है, तो शरीर को लेकर ही तो जुड़ा था। तो कैसे वो जहां से मिला है नाम वो आगे से आगे बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए। समय काफी हो रहा है ना, थोड़ी सी गुरु पूर्णिमा और मना बस वहां पर आ जाते हैं। ये तो मौसम बढ़िया है, हाँ टेंट लगे हुए हैं, पंखे भी चल रहे हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा आज ही नहीं फिर भी कभी मना सकते, कभी कभी खास मौके आते, बहुत खास मौका आता है जब यदि गुरु पूर्णिमा हम मना लें तो वो बहुत भारी गुरु पूर्णिमा होगी। जैसे एक ही दृष्टांत देते हैं, ये ध्रुव के जीवन में अर्जुन के जीवन में भी आया, जब ध्रुव तिरस्कृत हुआ अपने ही पिता से, अपनी ही माँ से, माता से, नहीं जाओ तुम इस गोद में राजा की गोद में नहीं बैठ सकते हो, तुम तो दासी के पुत्र हो, और राजकुमार था भाई, सब सम्मान करते थे और दत्तकार आ गया, इतनी अपमान उसका जला जा रहा है, पीड़ित है, इतना अपमान निराला, रो रहा है। उम्र कितनी है? अभी 5 वर्ष। इतना स्वाभिमान है अंदर, इतना तेज है अंदर, मुर्दा नहीं है। इधर तो कोई गाली गलौज भी दे तो हिम्मत नहीं होती कि अंदर से आ चल छोड़ो क्या करे, मजबूरी है ये है। और यदि हिम्मत होती है तो मार काट और गाली गलौज भी होती है। उस अपमान को पीने की हिम्मत नहीं होती है। हाँ, बचना चाहते हैं डरते हुए या प्रतिक्रिया करते हुए, अंदर नहीं जाने देते हैं। लेकिन ध्रुव हिल गया अंदर सारा, पांव अंगूठे से लेकर सिर तक कांप रहा है। ये क्या? माँ के पास गया तो माँ ने समझाया वो ठीक है, राजा की पसंद है, वो उसकी सुरुचि है। तो मैं तो जैसा भी जीवन व्यतीत कर रही हूँ, लेकिन ध्रुव कहता मैं ऐसा जीवन व्यतीत नहीं कर सकता हूँ, मैं गाली गलौज नहीं करता, लेकिन ये जो अंदर मुझे हिलाए जलाए जा रहा है, इससे छूटने का साधन नहीं है, कोई कोई रास्ता नहीं है। तो माँ कहती हाँ रास्ता तो है, वो है तू सबके जो पिता परमात्मा, उसकी गोद में जाकर तू बैठ, वो रास्ता है। कैसे मिलेगा? कहते मुझे खुद नहीं पता, मुझे पिला होता, मुझे पता होता तो मैं यहाँ कहाँ होती, मैं भी उस प्रकार से भक्ति में लीन होती परमात्मा की। मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं जानती रास्ता जरूर है जो संसार के दुखों कष्टों अपमानों से बिल्कुल परे ले जाने वाला है। तो ध्रुव कहता है मैं यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ ये अपमान है, मैं वो परम पद प्राप्त करके रहूंगा। और घर छोड़ दिया 5 साल के मालक, किसकी तलाश में? उस रास्ते की तलाश में। तड़प है अंदर, ज्वाला भरी हुई है, अग्नि है अंदर। कहां जाना है कुछ नहीं पता, क्या करना है कुछ नहीं पता, नाम क्या है कुछ नहीं पता, फिर भी इतनी भरी तड़प है कि उसको बेचैन किए हुए है। और जब ऐसी तड़प हो भगवान से मिलने की तो फिर क्या होता है, वो गुलगुलमा आती है। नारद के साथ मिलन हुआ, रास्ता मिला, और साधना करते करते ध्रुव ने अटल पद प्राप्त किया। तो ये क्षण आते हैं भाई, हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और बार बार आते हैं। बात यही है कि उन क्षणों को हम गुरु पूजा में बदल लें, गुरु पूर्णिमा में बदल लें। हाय मर गए मेरे कर्मों का फल है, दुख रोते रोते हाय हाय करते हुए सहते रहे, या उल्टी प्रतिक्रिया करते हुए दुनिया पर ऐसे करते हुए सहते रहे, दोनों में से कुछ नहीं। ऐसी किसी भी परिस्थिति में अंदर और गहरे गोता, और गहरे गोता, तो ये गुरु पूर्णिमा है, उसी को मनाने का संकल्प करें। हाँ अभी ठीक ठाक है, मनाते चले जाए, ऐसी परिस्थिति ना ही आए और गुरु पूर्णिमा मन जाए, ये तो बात ही अलग है। तत्ती भावना लग गई है, ऐसा मौका ही ना आए पहले ही मना लो भाई, ये तो मनानी तो पड़ेगी। तो ये कह के प्रसंग समाप्त करते हैं।